से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, शांति सिखा के बदला सभी का जीवन, आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, शिव बाबा पधारे ओ ओ। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ।
ओम शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज बाबा की सारी मुरली ड्रामा पर है। ड्रामा के कई गुह्य राज हैं जो मनुष्य नहीं समझते हैं, इसलिए कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। ऐसा क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये कहाँ, ये कब। और जब ड्रामा का ज्ञान मिल जाता है तो ये सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। तो क्या क्या ड्रामा के राज हैं वो बाबा ने आज बताया है। तो ड्रामा को अगर हमने सही रूप से समझा तो कभी भी कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। प्रश्न तभी उठते हैं जब ड्रामा को हमने समझा नहीं है। तो आज के बाद ये क्यों ऐसे हुआ, ये कैसे हुआ, हाँ, ये सब जो भी बातें आती है ना, बाबा कहते हैं सबको फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। सबका पार्ट फिक्स्ड है, बदल नहीं सकता कोई, कितना भी कहे ऐसा नहीं पार्ट हो अगले कल्प में, वो नहीं होगा, उसको स्वीकार करना ही होगा। तो अगर स्वीकार करेंगे तो संतुष्ट रहेंगे, अगर क्यों क्यों में लग जाएंगे तो फिर तो टेंशन बढ़ता ही जाएगा। तो आज बाबा ने ड्रामा को सही रूप से हम कैसे समझें वो बहुत गुह्य रूप से सुनाया है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 3/7/2025 है। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। लिस्ट बन सकती है इस ड्रामा के बारे में क्या क्या है। पहली बात, तुम इस बेहद नाटक में वंडरफुल एक्टर हो, है ना, हम सब वंडरफुल एक्टर। ये अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। प्रश्न है, बुद्धिवान दूरान देशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं। दूरान देशी नहीं है, सचमुच बुद्धिवान अगर नहीं है तो ये प्रश्न उठेंगे। तो बुद्धिवान दूरान देशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं। उत्तर है, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वो दूरान देशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। तो दूरान देशी बच्चे, सचमुच बुद्धिवान बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ का सारा ज्ञान बुद्धि में रहता है। वो जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। हाँ, कोई कहे ना बस मैं मर जाऊँ, हाँ मैं चली जाऊँ, या तो कोई कहे मुझे मोक्ष मिल जाए, परंतु बाबा कहते हैं किसी का भी पार्ट समाप्त नहीं होता, कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाए के। ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना, अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो कोई अक्षर रॉन्ग भी है। कौन से अक्षर रॉन्ग है? ये सब कबीर के दोहे हैं इस गीत में ना, तो कौन सा बाबा कहते अक्षर रॉन्ग है? उसमें आता है ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, पर जो सुख में करे तो दुख काहे को होए। सुख में सिमरण ना किया तो दुख में करता याद रे। बाबा कहते हैं ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सुख में तो कोई याद करता ही नहीं है। सचमुच अगर सत्युग त्रेता में भी जो सुख का समय है उस समय भगवान को याद करते तो द्वापर कलयुग आता ही नहीं, परंतु वहाँ नहीं करते इसीलिए द्वापर कलयुग भी आता है, तब भगवान को सिमरते हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ अक्षर राइट है तो कुछ रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरण किया ही नहीं जाता है। जो लोग धन के नशे में चूर होते हैं ना, सब कुछ है उनको, कोई कमी नहीं है। हाँ, समझते मुझे तो भगवान भी नहीं चाहिए, और कई तो समझेंगे भगवान भगवान कोई चीज़ है ही नहीं। तो सुख में तो सिमरण किया ही नहीं जाता, दुख को भी आना है ज़रूर, और जब उनके ऊपर कष्ट आता है तो देखो भगवान को कितना याद करते हैं। परंतु कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सहज चलता है, तो भगवान को याद भी नहीं करते। तो सुख में तो सिमरण किया नहीं जाता, दुख को भी आना है ज़रूर, दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, क्या मालूम है? कि अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं, शांति धाम और सुख धाम। पहले मुक्ति होती है फिर जीवन मुक्ति है। शांति धाम घर है, वहाँ कोई भी पाठ बजाया नहीं जाता, वहाँ कोई पाठ है ही नहीं शांति धाम में। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, अब वहाँ मंच ही नहीं है शांति धाम में, मंच तो यहाँ स्थूल वतन में है, तो एक्टर्स तो घर चले गए। तो बाबा कहते हैं जैसे एक्टर्स तो घर में चले जाते हैं तो वहाँ कोई पाठ नहीं बजाते, पाठ तो स्टेज पर ही बजाया जाता है। ये भी स्टेज है, बेहद का मांडवा बाबा कहते हैं। जैसे हद का नाटक होता है वैसे ये बेहद का भी नाटक है। इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के कोई और समझ न सके, और न कोई और समझा भी सके। बाबा ही जानते हैं और वो ही समझाते हैं। वास्तव में अब और भी अक्षर बाबा ने आज और कई बातें कही हैं। वास्तव में ये यात्रा अथवा युद्ध अक्षर भी सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं। कल की मुरली थी ना, सारे युद्ध पर ही थी, कमांडर और ये लेफ्टिनेंट जनरल ये वो, बाबा कितने कितने शब्द बाबा ने कहा, तो तुम्हारे में भी है। तो ये युद्ध जो शब्द है ये भी, हाँ, इसका भी राज है। कोई युद्ध हम कर नहीं रहे हैं, तो न यात्रा शब्द कोई उस प्रकार फिजिकल यात्रा है, तो न युद्ध शब्द कोई फिजिकल रूप में भौतिक रूप में है, न ही कोई यात्रा भौतिक रूप में है। लेकिन बाबा ये दो शब्द यूज़ करते हैं, अलंकृत भाषा है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने के काम में आते हैं, बाकी इसमें युद्ध आदि तो कुछ है ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं, बैठे हैं शांति से, तो युद्ध आदि तो कुछ है ही नहीं। यात्रा भी अक्षर है, बाकी है तो याद, कोई हम चल नहीं है यात्रा में तो चलते हैं, या हम चल भी नहीं रहे बैठे हैं तो भी बाबा कहते यात्रा है, तो ये याद है। याद करते करते पावन बन जाएंगे। ये यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, सतयुग में ये याद की यात्रा नहीं करेंगे, ये यात्रा भी यहीं पूरी हो जाएगी। कहाँ जाना नहीं है, यात्रा ऐसी नहीं है कि कोई हम कहीं जाते हैं, कहाँ जाना नहीं है। तो बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। ज़रूर क्यों यात्रा कहते हैं, क्योंकि यात्रा करते करते हम अपने घर चले जाएंगे। पावन बनकर अपने घर जाना है। अपवित्र तो जा न सके, अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पाठ है। अभी वो पाठ पूरा हुआ, चक्र एक पूरा हुआ तो पाठ भी एक चक्र का पूरा हुआ। तो बाप राय देते हैं, अब चक्र पूरा हुआ तो क्या राय देते हैं, वो भी बहुत सहज है। कौन सी राय? मुझे याद करो, सबसे सहज राय है, क्योंकि घर जाना है। बाकी बैठे तो यहाँ ही हैं, कहाँ जाते नहीं हो। बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं, युद्ध हो तो पहले तो मैदान चाहिए, फिर हथियार चाहिए, हाँ क्या नहीं चाहिए युद्ध के लिए। युद्ध कोई है नहीं, अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है, बस यही मूल बात है। इसमें कौन है हमारा दुश्मन? माया। तो माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें ज़रूर मनुष्य ही होंगे, भारत में मनुष्य ही होंगे। ज़मीन थोड़ी बदलेगी, ज़मीन नहीं बदलेगी, ये धरती जो है भारत की वो तो रहेगी, लेकिन हाँ मनुष्य जो अभी हैवान हो गए हैं, हाँ जानवर से भी बदतर हो गए हैं, वो बदल कर देवता बन जाएंगे। तो ज़मीन थोड़ी बदलेगी, मनुष्य ही होंगे। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वो कौन है, वो कौन है जो पतित से पावन बनाने आएगा, वो कैसे आते हैं कुछ नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है, हाँ बन गए ना सब समझदार, पूरा राज रचयिता और रचना का समझ गए हैं। बाबा ने तुमको समझदार बनाया है। कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो, वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंच है, वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंच है यहाँ के शाहूकारों से। यहाँ कोई अरबपति खरबपति हो, पर वहाँ के गरीब यहाँ के अरबपति से भी साहूकार होंगे। भल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, द्वापर कलयुग में भी कितने राजाएं थे, कितना धन था, धन बहुत था, परंतु है तो विकारी ना। वो राजाएं द्वापर कलयुग के तो धनी बहुत थे, लेकिन थे तो विकारी ना। इनसे वहाँ की, यहाँ के जो राजाएं हैं इनसे भी वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। साधारण प्रजा भी बहुत धनवान होगी, तो सबसे गरीब भी कितने धनवान होंगे यहाँ के अमीरों से भी। बाबा फर्क बतलाते हैं, वो दुनिया सतयुग की और ये कलयुग दुनिया में कितना फर्क है। बाबा फर्क बतलाते हैं, रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। क्यों पतित बने? माया का परछाया आया तो अंधियारा हो गया। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह माथा जाकर टेकते हैं। तो बाप यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं बाबा, बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊँच चढ़ा देते हैं, एकदम ऊँच चढ़ा देते हैं बाबा आते ही। सेकंड की बात है, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का, तुम बच्चे दूरांदेशी बन जाते हो। हाँ, दूरांदेशी माना दूर को भी देख सकते हो, दूरांदेशी तो दूर दूरांदेशी बन जाते हो। किस किस को हम देख सकते हैं, ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। जैसे हद का ड्रामा देख करके आते हैं फिर आकर के सुनाते हैं ना। अब कोई फिल्म देखकर आए तो फिर कोई पूछेगा वो फिल्म कैसी थी, क्या था, क्या कहानी थी, तो सारा सुना देंगे ना, क्योंकि सारी फिल्म देख ली है। तो जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना क्या क्या देखा, तो बुद्धि में भरा हुआ है जो फिर वर्णन करते हैं। आत्मा में भर कर आते हैं फिर आकर डिलीवरी करते हैं। अब वो जो दृश्य देखे, जो कहानी सुनी, वो बुद्धि में भर गया, आत्मा में भर गया, फिर आकर डिलीवरी करते हैं, माना सुनाते हैं। ये फिर है बेहद की बातें। तो तुम बच्चों की बुद्धि में इस समय, बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में इस समय बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है फिर बदले में दूसरा आ जाता है, कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। अब ये तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें ज़रा भी अदली बदली नहीं हो सकती, ज़रा भी, हाँ एक रिंचक मात्र भी अदली बदली नहीं हो सकती। तो तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं, ये शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहु रूपी पाट बजाते हैं, बहु रूपी पाट। हाँ, एक चोला छोड़ा, दूसरा चोला लिया, दूसरा चोला छोड़ा, तीसरा चोला लिया, ऐसे जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो ये बहु रूपी पाट बजाते हैं। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना, मेरा क्या पार्ट है इस ड्रामा में, हर एक्टर को अपने पार्ट का तो मालूम होता है ना। बाप बच्चों को ये चक्र का राज तो समझाते रहते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं फिर जाते हैं, फिर नए सिर आकर पाठ बजाते हैं। तो ये कैसा खेल है, आते हैं फिर जाते हैं, फिर दूसरा पाठ बजाते हैं, फिर उस पाठ में आते हैं, फिर वो चोला छोड़ते हैं, फिर जाते हैं, फिर दूसरा पाठ बजाते हैं। अब इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है, बीज में भल नॉलेज है फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। शिव बाबा बीज है इस ड्रामा का, इस नाटक का, या कहो कि कल्प वृक्ष का, तो भले बीज है, सार है उनमें, पर समझाने में तो टाइम लगता है। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है, सो भी जो अच्छे बुद्धिवान है वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है, इस बेहद के झाड़ का बीज ऊपर में है। इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, हाँ ये सब समझते हैं, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है, उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा, हाँ पालना के लिए विष्णु, संहार के लिए शंकर, तो इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। ये समझानी तो बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य दे न सके। जब यहाँ आए, हाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें आए, तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो कि आकर के, यहाँ आकर के समझो। कोई कोई तो बहुत कट्टर होते हैं, कट्टर किस बात में, वो कहते हैं हमको कुछ भी सुनना नहीं है, तुम जो कुछ सुनाते हो हमको कुछ भी सुनना नहीं है, है ना। कई माताएं बताती है कि हम तो बाबा के ज्ञान में आ गए, हमें तो ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, फिर हम अपने पति को सुनाते हैं तो कहते हमको नहीं सुनना है, हमको नहीं सुनना है, तो बिल्कुल विरोध करते हैं उनको। थोड़ा भी वो समझे तो समझ में आएगा, लेकिन नहीं सुनना है। तो बाबा कहते हैं कोई कोई तो बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हमको कुछ भी सुनना नहीं है, कोई तो फिर सुनते भी हैं, सारे तो एक जैसे नहीं हैं, कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई लिटरेचर भी लेते हैं, कोई फिर नहीं लेते हैं। आते हैं ना मेलों में, इतना सुनने के बाद फिर लिटरेचर कोई लेते हैं, और बहुत लिटरेचर लेते हैं, और कोई तो बिल्कुल लेते ही नहीं हैं, कोई नहीं लेते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल दूरांदेशी हो गई है, तीनों लोकों को तुम जानते हो, मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। हाँ, सूक्ष्म वतन की कोई कहानी नहीं बनाएंगे, कोई ड्रामा नहीं होगा। कनेक्शन सारा कौन किसका है, मूल वतन और स्थूल वतन का ये कनेक्शन है, सारा कनेक्शन है मूल वतन और स्थूल वतन से, बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है, केवल संगम युग के लिए ही है सूक्ष्म वतन। बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती है पाठ बजाने, ये झाड़ सब धर्मों का नंबर वार है, सब कैसे नंबर वार आते हैं इस झाड़ में, ये है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है, एकदम एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट, कुछ भी आगे पीछे हो न सके। बाबा वर्णन करते हैं ना, इस कल्प में ये पक्षी यहाँ से उड़ा तो अगले कल्प में वही पक्षी फिर से उड़ेगा, तो कुछ भी वो बदल नहीं सकता, कुछ भी आगे पीछे हो न सके, न आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती है, परमधाम भी उनका स्थान फिक्स्ड है, और जगह कहीं नहीं जाके बैठेगी, उनकी जगह भी फिक्स्ड है परमधाम में, न आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती है, आत्माएं ब्रह्म महतत्व में, आज बाबा कहते हैं बैठती नहीं है, क्या कहते है? खड़ी है, खड़ी होती है आत्माएं, खड़ी होती है। तो क्या मिसाल देते बाबा, जैसे सितारे आकाश में खड़े हैं ना, कोई कुर्सी थोड़ी है जिस पर वो सितारे बैठे हैं, तो आत्माओं को भी कोई कुर्सी थोड़ी होगी परमधाम में जहाँ वो बैठेंगे, खड़े हैं बस वहाँ खड़े हैं। हाँ, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं, ये स्टार्स तो बहुत दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं, है तो बड़े, ये कोई छोटे नहीं है परंतु बहुत दूर है, इसीलिए हमको आकाश में ये छोटे छोटे दिखाई देते हैं सितारे। लेकिन आत्मा, अब आत्मा से अगर भेंट करें तो आत्मा तो न छोटी बड़ी होती है, ऐसे थोड़ी है दूर है तो छोटी है, नज़दीक आती है आत्मा तो बड़ी है, नहीं उसकी साइज वही है। लेकिन आत्मा तो न छोटी बड़ी होती है, न विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो फिर आयरन एज में आते हो, तो बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे अब आयरन एज में आ गए हैं, कोई वैल्यू ही नहीं रही है, कहाँ सोने की वैल्यू और कहाँ लोहे की वैल्यू, कितना अंतर हो जाता है, कोई वैल्यू ही नहीं रही है। भल माया की चमक कितनी भी है, भवका बहुत है, कितना भवका है दुनिया में, भल माया की चमक कितनी भी है, परंतु ये क्या है, माया की चमक को क्या कहेंगे, ये रावण की गोल्डन एज है, शिव बाबा की गोल्डन एज नहीं है, ये रावण की गोल्डन एज है। और सतयुग है ईश्वरीय गोल्डन एज, जो ईश्वर ने गोल्डन एज बनाई और ये रावण ने बनाया गोल्डन एज। मनुष्य कहते रहते हैं, अब क्या क्या बनाते, 5-year प्लान बनाते हैं ना, पंचवर्षीय योजना, तो उसमें क्या क्या बताते हैं, मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा जो बात मत पूछो। देखो उनों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। उनों का तो बहुत बड़ा बड़ा प्लान है, हाँ कैसे ये सब होगा, अभी ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये हो रहा है, बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं भगवान का प्लान तो कुछ और ही है, नर चाहत कुछ और एक ही और भाई। तो और तुम बच्चों का प्लान क्या है, बाप कहते हैं मेरा प्लान क्या है, क्या है बाबा का प्लान। जो बाबा का प्लान सो बच्चों का प्लान, पर मनुष्यों का प्लान तो कुछ और है, तो क्या है बाबा का प्लान। बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी दुनिया को नया बनाना। पर किस रूप में बनाते, ऐसे ही नहीं यही नया बनाते, नहीं इसका तो विनाश चाहिए फिर नया चाहिए। तो बाबा कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी को नया बनाना, तुम्हारा एक ही प्लान है, अलग अलग प्लान नहीं है, एक ही प्लान है। जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। सबसे बड़ी मत कौन सी है शिव बाबा की, मन को मेरे में लगाओ, बस सबसे बड़ी मत यही है भगवान की। याद में रहने की मत देते हैं, मत अक्षर तो है ना, हाँ श्री मत, मनुष्य मत, पर मत, ये मत तो, मत अक्षर तो है ना। संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं, बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं, पर भाषाएं तो ढेर है ना। गीता का भी जो ट्रांसलेशन कितनी भाषाओं में है, कई जो भी भाषाएं हैं सब में गीता का ट्रांसलेशन है। तो भाषाएं तो ढेर है ना, इंटरप्रेटर भी होते हैं जो उन भाषाओं में ट्रांसलेट करते हैं, जो सुनकर फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पूरी दुनिया में जो सबसे जास्ती जानते हैं वो इंग्लिश जानते हैं। और फिर बाबा कहते हैं भारत में तो हिंदी जानते हैं, तो भारत के बाहर भी कई हिंदी जानते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते भी हैं, बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती है। अब जो गांव में माताएं रहती है, कभी स्कूल ही नहीं गई, कभी पढ़ाई नहीं की, तो जो बस वहाँ की जो आम भाषा है वही बोलती है। बाकी माताएं तो घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती है। आज बाबा ने बड़ी हंसी की बात सुनाई है, आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं। अब माँ बाप तो भारत के गए हुए हैं और बच्चे वहाँ विदेश में, समझो इंग्लैंड में गए या जहाँ भी गए, तो वहाँ की भाषा तो वो सीख लेते हैं, फिर हिंदी भूल जाते हैं या मदर लैंग्वेज जो मातृभाषा भूल जाते हैं, तो उनको तो आती नहीं क्योंकि वहाँ की भाषा में बोलते हैं। फिर जब यहाँ आते हैं तो उनके दादा दादी नाना नानी उनको तो इंग्लिश आती नहीं मानो, अब वो इंग्लिश में बात करेंगे और फिर नाना नानी दादा दादी क्या समझेंगे। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं, हिंदी बोल ही नहीं सकते। हम कई बार आते हैं लंदन से, आते हैं उनके बच्चे भी आते हैं, वो इंग्लिश में ही बोलते हैं, माँ भी उनसे इंग्लिश में ही बोलती है। लेकिन कई हमने देखा माँ जो होती है वो बहुत समझदार होती है, वो बच्चे को पहले से हिंदी सिखाती है, गुजराती सिखाती है, ऐसे नहीं कि खाली इंग्लिश बोले और जब भारत में जाएंगे तो उनको हिंदी इंग्लिश आए ही नहीं, तो इसलिए उनको सिखाती है। घर में कहेंगे हिंदी बोलो, गुजराती बोलो, मराठी बोलो या जो भी, मदर लैंग्वेज ज़रूर सिखाती है। अंग्रेजी सीखते हैं फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं, हिंदी बोल ही नहीं सकते हैं। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं, वो बिचारी मूंछ पड़ती है नानी दादी मूंछ पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश से, हम क्या जाने इंग्लिश से। हमारी बड़ी दीदी थी ना, तो बड़ी दीदी भी ऐसे ही थी, बड़ी दीदी को इंग्लिश पढ़ी नहीं थी, दादी जी तो फिर भी पढ़ी थी, मैट्रिक तक पढ़ाई की थी, पर बड़ी दीदी तो बस थोड़ी सी पढ़ी थी, कुछ भी होगा, पर इंग्लिश तो नहीं पढ़ी थी। तो जब विदेशी यहाँ आते थे, मुझे याद है मैं विदेशियों को लेके जाती थी दीदी से मिलाने, तो वो इंग्लिश में बोलते थे, तो दीदी कहती क्या गिटमिट बोलते हैं, क्या गिटमिट बोलते हैं। दीदी इतना हंसाती थी, गिटमिट गिटमिट, तो ऐसे शब्द ऐसे बोलती थी। तो मैं कहती दीदी मैं आपको ट्रांसलेशन करके बताऊंगी। तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया के माइकल और जो, ये जो जुड़वे बच्चे दोनों जुड़वे, वो जाते थे दादी दीदी से, उनका बहुत प्यार था, बहुत प्यार था, और उनको बहुत प्यार करती थी दीदी भी और वो भी। तो वो दीदी से एक ने कहा मेरा नाम माइकल है, दूसरे ने कहा मेरा नाम जो है। तो दीदी कही जो क्या होता है, जो क्या होता है, माइकल साइकिल, हाँ माइकल जो नहीं मालूम, माइकल साइकिल। तो दोनों का नाम पड़ गया माइकल साइकिल, माइकल और साइकिल। हाँ ऐसे बहुत दीदी से बहुत ऐसे रमत गमत करते थे और बहुत हंसाती थी दीदी। तो बाबा कहते हैं तो वो बेचारी मूंछ पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश से, फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े। फिर वो नानी दादी, फिर उनको थोड़ा अब पोतरों से बात करनी है, उनको तो हिंदी आती नहीं, मातृभाषा भी नहीं आती है, तो टूटी फूटी इंग्लिश शब्द नानी दादी सीखती है ताकि कम से कम पोते दोते से बात तो कर सकें। सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी, जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। हर 5000 वर्ष बाद ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। हाँ दीदी भले पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन हाँ दीदी बहुत श्रूड बुद्धि थी, एकदम श्रूड। दूरांदेशी भी इतनी ही थी, एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी ज़बरदस्त था दीदी में। तो बाबा कहते हर 5000 वर्ष बाद ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप की ही याद में रहना है, यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। मधुबन में आते हैं, अब भट्टी में आए हैं, पूरी फुर्सत ही फुर्सत है, बस क्लास सुनो और भोजन करो, बस चार धाम की यात्रा करो, और तो कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है, सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आता है। अगर बारिश नहीं है तो बहुत अच्छा मौसम सवेरे का होता है, तो बड़ा मज़ा आता है घूमने फिरने में। अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स हैं, फिर उसमें बातें नहीं करते जाना है, अंदर ही अंदर मनन चिंतन चले, जब पैदल भी जाते हैं तो अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स हैं। ये भी अभी स्मृति आई है, बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है, हम सतो प्रधान थे, ये बड़ी खुशी की बात है। कितनी खुशी की बात है, हम सब सतो प्रधान थे। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं। अब आप उसमें बातें करेंगे यहाँ वहाँ की, इधर की बस उधर की, उनकी कमाई थोड़ी होती है। यहाँ तो हम चलते फिरते भी कमाई करते हैं, हमारा जमा का खाता चलते फिरते भी बन जाता है। तो बाबा कहते हैं उनकी कुछ भी कमाई नहीं, तुम तो बहुत कमाई करते हो। बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। सब में कमाई कमाई है, बुद्धि में जो हम ज्ञान का मनन करते हैं या याद करते हैं उसमें कमाई कमाई है। तो चक्र भी बुद्धि में याद रहे और बाप को भी याद करो। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी बताते हैं, उन्हें ही माया कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, हाँ वो सावधान हो जाए, जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते तो उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है, माया परेशान करेगी, क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन करते ही नहीं है। तो उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है, उन्हें ही माया तंग करती है। सुना, किनको माया तंग करती है, जो ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते। हाँ माया बहुत आती है, व्यर्थ संकल्प बहुत आते, ये जो बताते रहते हैं ना अपनी समस्या, पूछते यही पूछते हैं व्यर्थ संकल्प कैसे मिटे। अरे तुम ज्ञान का मनन चिंतन करो, व्यर्थ संकल्प अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं उन्हें ही माया तंग करती है, तो अंदर में ये विचार करो हमने ये चक्र कैसे लगाया है। सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। माया की खिटखिट तब तक है जब तक न याद है न मनन चिंतन है। ज्ञान का मनन चिंतन करो, बाबा को याद करो, ये खिटखिट माया की खत्म हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा, बल स्त्री पुरुष साथ जाते हो। हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है, अपना ऊंच पद पाने। अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा आए, नहीं तो कोई साथ में है तो सोचेंगे थोड़ा बात करें, थोड़ा उनसे बोले, पर अकेले में बाबा की याद में चले जाओ तो बहुत ही मज़ा है। लेकिन यहाँ नहीं जाना अकेले में, हाँ अकेला अंधेरे में जाते हैं, यहाँ भालू भी है, चीता भी है, बहुत कुछ है। अकेले में कहीं नहीं जाना, और रात को तो बिल्कुल ही नहीं। अकेले में जाने से तो बहुत ही मज़ा है, अपनी ही धुन में रहेंगे। दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी, ये कुछ बात करूं, कुछ बात करूं उनसे। तो है बहुत सहज, बगीचे आदि तो सब जगह है। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, ये करना है, वो करना है। हाँ, बुद्धि में प्लान आ जाता है। तुम भी घर में बैठो फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे, सत्युग की तरफ लगी रहे। ये आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे, ये आदत रहे। मन में क्या सोचना है, पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनना है, सबको पावन बनना है। आत्मा को हक है, किसका हक है, बाप से वर्षा लेने का। हर आत्मा को अधिकार है बाबा से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ये बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा न सके, ये आध्यात्मिक विद्या है। हाँ, विद्या, विद्या के लिए शास्त्रों में कहते सा विद्या या विमुक्ते। सच्ची विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए दुखों से, रोगों से, शोक से, शांति से, पापों से, जो मुक्ति दिलाए वही सच्ची विद्या है। तो और तो कोई सिखा न सके ये आध्यात्मिक विद्या। तुम्हारी ये जो आध्यात्मिक विद्या है ये तुमको बाप ही आकर के पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या, और वो है शास्त्रों की विद्या। जो शास्त्र पढ़ते वो शास्त्रों की विद्या, स्कूल कॉलेज में जिस्मानी विद्या, और यहाँ ईश्वरीय विद्या, रूहानी विद्या। ये फिर है रूहानी विद्या जो तुमको भगवान सिखलाते हैं, इनकी किसको भी पता नहीं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो रूह आकर के पढ़ाते, जो रूह आकर पढ़ाते हैं उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता है। हाँ, शिव बाबा का भी नाम वही की है, और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। ये तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। शिव भगवानों वाच है ना, भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वो शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक है जिस्मानी कॉलेज आदि की, और दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, और तीसरी है ये रूहानी नॉलेज। वो भल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी है, हाँ PhD करते हैं ना तो डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी कहलाते हैं, परंतु उनों के पास भी शास्त्रों की बातें हैं। तुम्हारी ये नॉलेज बिल्कुल अलग है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति का सागर, सुख का सागर। अब श्री कृष्ण की महिमा तो बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण तो मनुष्य में होते हैं। अब श्री कृष्ण की महिमा है सर्व गुण संपन्न, परंतु वही आत्मा फिर समय अनुसार सर्व अवगुण संपन्न भी हो जाती है ना। हर आत्मा सर्व गुण संपन्न बनी, फिर सर्व अवगुण संपन्न बनी। तो गुण और अवगुण ये तो मनुष्यों के लिए होते हैं जो बोलते रहते हैं। शिव बाबा के लिए गुण अवगुण की बात नहीं आएगी, वो बस ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सागर का तो कोई अंत है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो, वो तो सिर्फ तोते वाफी गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। हाँ, शिव कहते परमात्मा ज्ञान का सागर है, पर वो कौन सा ज्ञान देते ये पता ही नहीं। वो सुख का सागर है, पर कैसे सुख देते हैं पता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तोते माफी गाते रहते, अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, हाँ सब बाबा की राय सुने, क्या कि अपनी उन्नति कैसे करो, बाबा राय देते हैं। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा, फिर ऑफिस में काम करने समय भी यही स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली है, माया की स्मृति आधा कल्प चली है। अभी बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं, अपने को देखो, अपने को देखो, दूसरों को नहीं देखो, अपने को देखो। हम क्या थे अब क्या बन गए हैं, फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। ये भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तो पहले पहले भारत ही था, भारत में ही बाप भी आते हैं पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना, तुमको पवित्र बनना है। अगर नहीं बनेंगे तो क्या होगा, बाबा कहते हैं तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे। अब पवित्र नहीं बनेंगे तो पाप तो बहुत है, तो वो तो फिर सजा खाएंगे, और जितना सजा खाएंगे उतना फिर देरी से आएंगे। तो बाबा कहते हैं नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे। अब त्रेता के अंत में समझो आए तो क्या सुख पाएंगे। भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे ही नहीं। सत्युग त्रेता में वही आएंगे जिन्होंने भक्ति भी जास्ती की है, वे ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे, फिर वो पद भी ऊंच वही पाएंगे। भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे नहीं। तो समझ जाएंगे ये इतना उठाने वाला नहीं है, ज्ञान नहीं उठाने वाला है। समझ तो सकते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कोई विरले निकलते हैं। कितनी एग्जीबिशन मेले करते, क्या नहीं सेवाएं करते हैं, फिर भी कितने बाबा के बच्चे बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कोई विरले निकलते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं थकना नहीं है, सेवा करते रहो करते रहो। कैसे बाबा कहते कोई तो निकलेंगे, लेकिन थकना नहीं है, मेहनत तो करनी है। मेहनत बिगर कुछ मिलता थोड़ी है। खाना खाने में भी मेहनत है, चलो पकाओ नहीं, बना बनाया खाना मिल जाए, लेकिन भोजन को पचाने में, उसके पहले चबाने में मेहनत तो है ना, हर चीज़ में मेहनत तो है ही है। मेहनत बिगर कुछ मिलता थोड़ी है, प्रजा तो बनती रहती है, इसीलिए मेहनत से डरो नहीं कि हम इतनी सेवा करते हैं कोई निकलता नहीं है। बाबा कहते प्रजा तो बनती है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्तियाँ बताते हैं, बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ व बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है, बाबा मना थोड़ी करते पैदल नहीं करो, तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का रास भी बुद्धि में रहेगा। पैदल करते जाओ, बाबा कहते हैं पैदल करते जाओ माउंट आबू से आबू रोड तक भी, थकेंगे नहीं अगर बाबा की याद है तो। तो ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, अब ये है सच्ची कमाई। वो कमाई पूरी हुई फिर इस कमाई का चिंतन करो। नौकरी धंधा जो करते हो वो तो स्थूल कमाई होती है, वो समय चलो अभी अभी नहीं है, छुट्टी हो गई तो फिर ये कमाई करो, फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। बाबा का देखा हुआ है सारी जीवन कहानी लिखते हैं, कईयों की ऑटोबायोग्राफी आती है ना, नेहरू की ऑटोबायोग्राफी, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, कईयों की सारी वो अपनी जीवन कहानी लिखते हैं। तो कईयों की जीवन कहानी लिखते हैं, इतने इतने बजे उठे ये भी लिखते हैं, 4 बजे उठे ये भी, 3 बजे उठे ये भी लिखते हैं, फिर ये किया। समझते हैं पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे, ये जो मैं किताब लिख रहा हूँ ये दूसरे पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, तो बच्चों के लिए लिखते हैं, फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं और फिर गंवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब है, ये है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज, देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है उसके लिए ये नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं, बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, शरीर पर भरोसा थोड़े ही है। आजकल मौत भी बहुत इजी हो गया है, इतना इजी हो गया है, अभी चल रहा है फटाफ ऐसे ही तुरंत गिर गया। हाँ, आजकल तो बाथरूम में भी कितने गिरते हैं और बस मर गया, पता ही नहीं चलता। आजकल मौत बहुत इजी हो गया है, वहाँ अमर लोक में ऐसी मृत्यु कब नहीं होती, यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूसरा, दूरान देशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। वरदान, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है, मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल, मीठे बोल बोल दो, तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना। क्या रखना साथ? मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, सदा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना। स्लोगन, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राज युक्त बन जाएंगे। हर परिस्थिति में राजी रहो तो राज युक्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। हाँ, ये सारे महीने का हेडिंग है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। उसके अंतर्गत जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब संकल्प शक्ति जमा होती है और योग पावरफुल हो जाता है। इसके लिए समाने व समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे ढीली नहीं, ब्रेक फुल लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर एक सेकंड के बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर है। एक सेकंड में समाने की शक्ति, एक सेकंड में समेटने की शक्ति, अगर ज़्यादा समय लगता है इसका मतलब समाने की शक्ति कमज़ोर है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा, शशि बहन आएंगे और भोग लगाएंगे। बाकी तो कल जो आपको सुनाया था वो तो धारणा के लिए है, एक हफ्ता का प्रोग्राम, वो आपको मिल ही गया होगा, सेंटरों पर तो आता ही है। बाकी दीदी जी की विशेषताएं तो बहुत है, वो अभी तक कुछ कागज़ मिला नहीं है जो रोज़ का हम सुना सके।
ओम शांति। आज हम सब का बहुत ही प्यारा दिवस है। जब जब सतगुरुवार का दिन आता है, हमारी बुद्धि बाबा के पास चली जाती है और अमृत वेले से ही बाबा से मीठी मीठी रूहान करते हैं और बाबा भी बच्चों के प्यार को देखकर उसका रिटर्न देते हैं। और हर एक को यही होता है कि मैं भी बाबा के पास भोग स्वीकार करा रहा हूँ या स्वीकार करा रही हूँ। तो आज सतगुरुवार के दिन आप सभी में से कौन बाबा के पास जाकर के भोग स्वीकार कराएगा वो बताओ, हाथ खड़ा करो। कौन जाएंगे? सबको जाना है ना, बाबा को यही अच्छा लगता है। केवल एक संदेश ही नहीं, बाबा के सब बच्चे बाबा के सामने आए और बाबा सबको वतन में बुलाता है और बाबा सबको वो अनुभव कराते हैं। तो आज के दिन हम सब सूक्ष्म रूप से वतन में पहुंचेंगे, बाबा से मिलेंगे, बाबा से मीठी बातें करेंगे और बाबा को हम सब मिलकर के भोग स्वीकार कराएंगे। और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो आपको सुनाया जाएगा और उसके बाद पांच लाइन में अमृत होगा, एक लाइन होगी भाइयों की जो उस तरफ होगा और दो लाइनें बट्टी की, एक लाइन में बट्टी की टीचर्स बहने और दो लाइनों में टीचर्स बहने बट्टी की और बट्टी की माताएं होंगी। भाई एक तरफ उस तरफ होंगे और एक लाइन यहाँ होगी टीचर्स बहनों की और माताओं की, एक लाइन होगी बट्टी की यहाँ पर जो कैमरा रखा है और बाकी दो लाइनें इस तरफ अन्य बहनों की होगी। और केवल 5-10 मिनट में ही सबको अमृत मिल जाता है, इसलिए आज के दिन बाबा से मीठी मीठी बात करते हुए सबको रॉयल्टी से आना है और बहुत प्यार से लाइन में आना है। इसलिए इस बात का सबको ध्यान रखना है कि सब एक साथ इकट्ठे ना हो जाएं। और दूसरी बात, आप देख रहे हैं आप भट्टी वाले आए तो इंद्र देवता भी आपको देख कर के कितने खुश हो गए हैं। आज सुबह से ही कितनी अच्छी रिम झिम लगी हुई है ना, अच्छा लग रहा है ना सबको। वहाँ की जो बारिश होती है आपके शहर की या जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ और यहाँ में अंतर है। ये बारिश बहुत ही सुहावनी भी है और सुहावनी के साथ साथ ठंडी भी लगती है। हर एक को ध्यान रखना है कि ठंडा मौसम भी हो जाता है तो ज़रूर अपने साथ कोई ना कोई गर्म साधन हो, और फिर छतरी भी साथ में रखनी है। और जब आप चलते हैं, बारिश आती है, दौड़ना नहीं है, धीरे से चलो और आराम से चलो, और अपना पांव जो है संभल संभल के रखना है। बाबा हमेशा कहते थे कि ऐसा चलो जो कि आपका पांव स्लिप ना हो, आपका पांव स्टेबल रहे, तो इस बात का भी सबको ध्यान रखना है। सब ठीक है ना? हैं, बरसात अच्छी लग रही है ना? बरसात तो चाहिए, इसके बिना तो काम नहीं है। अच्छा है भट्टी वालों के लिए, स्वागत करने के लिए, आप सबका स्वागत करने के लिए आई है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी हम चलते हैं फिर से बाबा के पास। बाबा को हम सब मिल करके भोग स्वीकार कराएंगे। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, और 5 लाइन में अमृत होगा, 1 लाइन भाइयों की और 2 लाइनें भट्टी की टीचर्स बहनें और भट्टी की माताओं की, और 2 लाइनें अन्य बहनों की होंगी। अच्छा, ओम शांति।
तेरी याद में जी
जीते हैं बाबा तेरी याद में, जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों हो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी बहुत ही स्नेह भरी यादें लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते क्या देखती हूँ, दूर से एक बहुत सुंदर कमरा है, सजा सजाया है, चारों ही तरफ उसकी बहुत सुंदर डेकोरेशन है, लेकिन वो कमरा बंद था, गेट लगा हुआ था। और मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर क्या होगा, कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ कि बाबा सामने से आते हुए गेट के पास खड़े हुए। बाबा ने कहा, आओ बच्ची। तो जैसे बाबा ने कहा, मैं भी बाबा के पास पहुंची। बाबा ने कहा, संकल्प चल रहा है ना कि इस कमरे में क्या है। तो मैं मुस्कुराई। बाबा ने कहा, अच्छा देखो। तो बाबा ने ऐसे हाथ लगाया और वो गेट खुलता है, तो अंदर क्या देखती हूँ अंदर क्या देखती हूँ कि बहुत से फरिश्ते सजे सजाए रूप में दिखाई दे रहे थे। और वो दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। बाबा ने कहा, बाप बच्चों को किस रूप में, कभी किस स्वरूप में, कभी किस स्वरूप के अंदर बच्चों को तैयार करते हैं। तो आज बाबा ने सब बच्चों को फरिश्ता रूप में तैयार किया है। तो मैंने कहा, बाबा आज फरिश्ता रूप में क्यों? बाबा ने कहा, बाबा दिखाएंगे। तो बाबा जैसे सभी फरिश्तों को दृष्टि भी दे रहे थे और इतने उनके अंदर उमंग और इतना लहर दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा, अच्छा सभी फरिश्ते अब विश्व के अंदर चक्कर लगा के आओ। तो सब बहुत खुश होते हैं और जैसे वो बाहर निकलते हैं, कुछ फरिश्ते जो हैं, बाबा ने कहा, विश्व के अंदर विश्व की स्थिति भी देखो और विश्व की आत्माओं को क्या चाहिए, उनकी मनोकामना पूर्ण करो। तो सब बहुत खुश होते हैं, कहते हैं, हाँ बाबा जी, बाबा ऐसे कहा। और जैसे वो बाहर निकलते हैं तो उड़ने लगते हैं। कुछ फरिश्ते तो थोड़ा ऊपर की ओर उड़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर के अंदर उनके पंख जो है ऐसे लड़खड़ाने लगते हैं। और कुछ फरिश्ते और ऊपर की ओर के जाते हैं, तो किसी का जो फरिश्ते का ताज है, वो ताज जो है थोड़ा हिलने लगता है। और फिर फरिश्ते कुछ ऐसे थे जो उड़ रहे हैं, काफ़ी दूर तक उड़ते हैं, तो उनके सामने हवा का ऐसा झोंका आता है, उनको रास्ता दिखाई नहीं देता है। फिर कुछ ऐसे थे जिनके हाथ में एक बहुत बड़ी रॉयल स्टिक थी, बहुत झंडी जैसी थी, वो जो लेके चल रहे थे, वो झंडी ऊपर की बजाय साइड में या नीचे की ओर आ जाती थी। तो बाबा देख रहे थे, हम भी देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखा बच्चे, बाबा हर रोज बच्चों को उनकी स्थिति को बनाने के लिए, विश्व कार्य के लिए बाबा हर रोज बच्चों को तैयार करते हैं। और वो कार्य करने के लिए बाबा बच्चों को भेजते हैं। तो कभी कभी बाबा देखते हैं बच्चों के अंदर इतना उमंग उत्साह है, लेकिन कभी कभी वो उमंग उत्साह में ढीले हो जाते हैं। और बाबा ने कहा, कभी कभी बच्चे अपनी जिम्मेवारी, जो बाबा ने इनको ताज पहनाया है, विश्व परिवर्तन का, और वो ताज पहन के कार्य भी करते हैं। कभी कभी बच्चे विस्मृति में आ जाते हैं, और कभी कभी कोई बच्चे डायवर्शन की ओर चले जाते हैं। उनका जो रास्ता क्लियर है, लेकिन वो रास्ते की तरफ से भटक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने माया के और लोगों के और कई प्रकार के माया के बाहरी अट्रैक्शन का जो डायवर्शन है, तो उनको रास्ते से दूसरी ओर ले जाता है। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चों को बाप ने जो जिम्मेवारी दी है कि बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है, वो कुछ दूर तक तो करते हैं, फिर कभी कभी वो विस्मृति की ओर जाते हैं। तो उनको ऐसा होता है कि बस हम कर ही रहे हैं, और लेकिन कहाँ तक करना वो भूल जाता है। फिर बाबा ने कहा, देखो वर्तमान समय अनुसार क्यों क्या जरूरत है, मनुष्य आत्मा भटक रही हैं, रास्ता ढूंढ रही हैं, अपने ईष्ट को पुकार रही हैं, उनको लगता है कोई रास्ता मिले, किनारा मिले, बहुत भयभीत हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर बाप ने बच्चों को जो जिम्मेवारी दी है, उसको बच्चों को स्थिति को समझ करके अपनी स्वस्थिति पर सीट की सेट पर होकर के बाप की प्रत्यक्षता और भक्तों की पुकार सुननी है। तो बाबा ने कहा, क्या भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती हैं? तो बच्चे मुस्करा रहे थे। बच्चे कईयों ने कहा, बाबा सुनाई देती हैं, हम सुनते भी हैं, लेकिन वहाँ तक उस पुकार को सुन करके उसको रिटर्न देने में कभी कभी आधे में हो जाते हैं, कभी पहुँच नहीं पाते हैं। बाबा ने कहा, उसके लिए बच्चों को क्या करना है, एक तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, और दूसरी बात बाबा ने कही कि बच्चों को अशरीरीपन का अभ्यास करते हुए और वे अशरीरी स्थिति के द्वारा विश्व के अंदर चक्कर भी लगाना है, ताकि मनुष्यों को, भक्तों को और सबको ये अनुभव हो कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमारी पुकार सुन रही है। नहीं तो समय कभी कैसा कभी अपना खेल दिखा रहा है, तो इस खेल के अंदर चक्कर में बच्चों को नहीं फंसना है, लेकिन उस खेल में न्यारे होकर के उसके द्वारा ही उनको अनुभव कराना। फिर बाबा ने फिर से बच्चों को वैसा तैयार किया, तो सब फरिश्ते उड़ने लगे, और कुछ फरिश्ते तो ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर चारों तरफ पहाड़ थे, और चारों तरफ ऐसा वातावरण था, सूना सा था। जैसे वो फरिश्ते पहुँचते थे, वहाँ चारों तरफ हरियाली हो गई और बहुत सुंदर वातावरण बन गया। और कुछ फरिश्ते ऐसे थे जो कोई बहुत दुखी लोग थे, उनके पास पहुँचते थे, उनको लगता था कि ऊपर से कुछ वरदान आ रहे हैं, तो वो खुशी में नाचने लगे। और कुछ फरिश्ते ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ मनुष्य कोई ना कोई खोज कर रहे थे, तो उनको ऐसे लाइट की किरण दिखाई दी, और उस किरण को देखते ही वो अपने को बहुत धन्य समझते थे, अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। बाबा ने कहा, अभी समय है हर एक को अनुभव कराना, और इसी स्थिति के द्वारा ही बाप की प्रत्यक्षता, और इसी स्थिति के द्वारा ही विश्व की हर आत्मा को अंजलि मिलेगी। अभी समय है अंजलि देने का, ताकि उस अंजलि के द्वारा वो भी कुछ ना कुछ अनुभव करे। फिर तो बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा, बाप के सभी बच्चे लाडले हैं, बाप के दिल तख्त नशीन हैं, बाप हर बच्चे की विशेषता को देखते हुए उन्हें अपने विशेषता के कारण उन्हें विशेष अनुभव भी कराते हैं और बाबा के बच्चे इस संगम युग के अंदर सारे विश्व की आत्माओं के सामने बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो बाबा को मैंने बताया, बाबा इस प्रकार से बट्टी चल रही है, तो बाबा ने कहा हम बाप जानते हैं, भाग्यशाली बच्चे बाप के सामने हैं। और बाबा ने सबको कहा सदा इसी खुशी में नाचते रहें कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य भाग्य विधाता ने बनाया है। तो बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए हाथ से ऐसे वरदान दे रहे थे, हर एक के पास एक बहुत सुंदर सा नहीं एक वरदान पहुंचता था कि वो उसमें लिखा हुआ था भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, मैं भाग्यशाली हूँ। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, फिर बाबा ने सबको भोग स्वीकार कराया और जिनके भोग के संदेश थे बाबा को याद दिया। बाबा ने कहा जिनके भी संदेश हैं वो तो पहले से बाबा के पास पहुंच जाते हैं और बाबा उनके संदेश का अमृत वेले से ही उनको जवाब दे देता है। फिर याद दिया ओम शांति।